श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहले पत्रस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि भविष्यद्वक्ता और प्रेरित एक ही बात कहते थे। अंतर केवल यह था कि प्रेरित उस समय की खाई को देख सकते थे जिसे भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु के कष्ट और महिमा के मध्य देख नहीं पाए थे। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार सुनाते थे। यह तो ऐसा महान समाचार है कि स्वर्गदूत भी इसको देखने की लालसा रखते हैं। मेरे प्रियो, अब पत्रस कहता है कि तैयार हो जाओ, सचेत होकर, यानी कि भावी अनुग्रह की आशा रखो। तो हम इससे पहले कि आज के अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी, आज के सुंदर समय के लिए जिससे आपने हम सभी श्रोता भाई बहनों के जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम पहले पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उनकी आत्मिक आंखों को, हृदय और विचारों को खोल दें, एकाग्रता पन दे, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, विशेष करके उन भाई बहनों से जो इस समय अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं, तनाव में हैं, अपने जीवन से लगाव नहीं रखते हैं, आप उनकी सहायता करें। वैवाहिक जीवन से परेशानी में है, आप उनकी सहायता करें। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें, हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके 13 पद को पढ़ें। पहला पत्रस एक अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। यह एक उपमा है। उस युग के लोग बागा पहनते थे और जब उन्हें कुछ काम करना होता था तब वे उसे कमर पर बांध लेते थे कि वह उनके पांव में आकर बाधा उत्पन्न न करे। आज भी हम कमर कसना चाहते हैं और कमर कसना कहते हैं। लिखा है सचेत रहकर, अर्थात गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। तब कहता है पूरी आशा रखो। यह महान आशा की पत्री है। परमेश्वर की संतान परीक्षाओं को क्यों सहन करे? क्योंकि हमें एक आशा है। हमारी यह आशा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। लिखा है जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ, जब प्रभु यीशु कलीसिया को लेने आएगा तब वह बहुत अनुग्रह साथ लाएगा। अपने अनुग्रह के द्वारा वह प्रत्येक विश्वासी को साथ ले जाएगा और प्रत्येक विश्वासी के कार्य प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने परखे जाएंगे। उस समय हमें या तो प्रतिफल मिलेगा या हम हानि उठाएंगे, यह भी निश्चय ही उसके अनुग्रह से होगा। मेरे प्रियो, एक दिन हमारा न्याय होगा। यह इस संसार में कष्ट उठाने की प्रेरणा देता है। अतः इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कैसा हो, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। आप विश्वासियों से एक नए जीवन की आशा की जाती है और यह जीवन केवल परमेश्वर का वचन हम में उत्पन्न कर सकता है। एक कारण यह भी है कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं में पड़ने देता है कि वह हमें अपनी योजना के अनुसार रूप देना चाहता है। हमें अपने सब क्लेशों में उसके अधीन आ जाना है ताकि हम उसमें बढ़ने पाएं। पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा हुआ है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान। धर्मशास्त्र हमें आज्ञाकारी बनाता है। आपको स्मरण होगा कि याकूब कहता है वचन के सुनने वाले ही नहीं उसके करने वाले बनो। परमेश्वर का वचन हमें आशा ही नहीं देता है, वह हमें आज्ञाकारी भी बनाता है। परमेश्वर के वचन का पालन करना आवश्यक है। हमें उसके निर्देशों के अधीन रहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें रोगी बनाकर एक ओर ले जाता है, क्यों? जिससे कि मैं परमेश्वर के वचन में समय दे पाऊं। ओह, विश्वासियों के जीवन में यह कैसा महत्वपूर्ण है। लिखता है, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, अर्थात उत्तम ज्ञान ग्रहण करने से पहले जो आपका जीवन था वैसे अब न रहो, वैसे अब न जियो जो मसीह को ग्रहण करने से पहले आप जीवन जीते थे। हमारे जीवन भीतर से नए हो जाने को प्रकट करें। हमें ऊपरी दिखावा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के अधीन ऐसा होना है कि हम वास्तव में नए हो जाएं। लोग मुझे देख करके कहें कि ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है। जी हां, नए रूप में देखने पाएं। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज पवित्रता का अर्थ गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि पवित्रता का अर्थ है ऐसा स्वभाव बनाना जो सामान्य से अलग हो, दिखावे का आचरण। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद चाहता है। उसने जो जीवन आपको दिया है वह प्रफुल्लित होना चाहिए। जैसे आपकी देह के लिए स्वास्थ्य है, वैसे ही आत्मा के लिए पवित्रता है। आप एक ख्रिष्ट पुष्ट जीवंत एवं स्वस्थ मनुष्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। पवित्रता का अर्थ है आत्मिक स्वास्थ्य एवं जीवंत अवस्था। आज ऐसे मनुष्यों की बहुत आवश्यकता है जो पवित्र जीवन जिए। पहला पत्रस की पत्र 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या हमारी पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता के समान हो? नहीं, हमारा परमेश्वर सिद्ध है और हम इस सांसारिक जीवन में उस स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ लोगों से भेंट कर चुका हूं जो सोचते हैं कि उन्होंने उस स्थिति को पा लिया है, परंतु मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो स्वीकार करे कि वे उस महामहिमन स्थिति में है। परमेश्वर के सदृश पवित्र होने का अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक परिपूर्ण एवं महान व्यक्तित्व का है। यद्यपि हम मात्र मनुष्य हैं, हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं, हम परिपक्व हो सकते हैं। एक अति सुंदर शिशु यदि 17 वर्ष तक शिशु ही रहे तो उसके साथ गंभीर समस्या है। उसे तो अभी तक एक हृष्ट पुष्ट युवक होना था। हम विश्वासियों को ऐसा ही आत्मिक विकास करना है। ऐसा विकास कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से, उसके अनुसार चलने से। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहां पर लिखा है बिना पक्षपात। परमेश्वर हर एक का काम बिना पक्षपात देखता है। परमेश्वर के पिट्ठू नहीं होते हैं। जी हां, परमेश्वर सबका न्याय बिना पक्षपात के करेगा। इसका आपके उद्धार से कोई भी संबंध नहीं है या आपके सांसारिक जीवन से संबंधित है। परमेश्वर के न्याय का भय हमें दीन बनाए और हमारे जीवन के प्रति अधिक सतर्क करे। मेरे मित्रों, सुनिश्चित करें कि हम दिखावा ना करें। क्या आपके चेहरे से हर जगह मुस्कान और ज्योति प्रसारण होता है? सुसमाचार मरी हुई घास पर गुलाब जल नहीं छिड़कता है। सुसमाचार जीवन बदल देता है और जीवित आशा लाता है जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित होती है। विश्वासियों को परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित जीवित उद्धारकर्ता से जीवन प्राप्त होता है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। लिखा है क्योंकि तुम जानते हो। मैं आशा करता हूं कि आप जानते हैं कि आपका उद्धार हो गया है। इन पदों में पत्रस आपके उद्धार के निमित्त परमेश्वर के कार्य की चर्चा करता है। यह आपकी मुक्ति है मेरे मित्रों, उसने आपके लिए कीमत चुकाई है। हम परमेश्वर के दंड के भागी थे। यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। परमेश्वर का यह आदेश बदला नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वह कल आज और सदा एक सा ही रहता है। यदि पाप परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता पर ध्यान दे तो परमेश्वर उसके लिए भय का कारण है। आज हम सुनते हैं कि हम नए युग में, नए विचारों में और नए सदाचारों में वास करते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं बदला है। उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह आदि और अनंत का ज्ञान रखता है। वह न तो समाचार पत्र पढ़कर और न ही टीवी पर समाचार सुनकर बदलता है। उसके लिए कोई भी जानकारी नई नहीं है क्योंकि वह पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञान रखता है। परमेश्वर ने अपने आदेश भी नहीं बदले हैं। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा अर्थात दंड पाएगा। आगे लिखा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। जी हाँ, सोना चांदी कितना भी शुद्ध किया जाए नाश तो होगा ही। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। तब आगे लिखता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जीवन व्यर्थ है क्योंकि वह प्रभु यीशु से रहित है, उसके उद्धार से रहित है। उद्धार रहित जीवन से अधिक अर्थहीन और कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर प्रत्येक पशु, प्रत्येक पेड़ पौधा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। आकाश में सूर्य, चांद और हर एक सितारा एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, परंतु परमेश्वर के बिना मनुष्य अर्थहीन है। किसी ने कहा है कि मनुष्य इस ग्रह की त्वचा पर एक दाने के समान है। परमेश्वर के बिना मनुष्य ऐसा ही है। हम इस जीवन की किसी भी नाशवान वस्तु के द्वारा छुटकारा पाएं ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य के पास अपने उद्धार के बदले परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता है? आप क्या दे सकते हैं जिससे परमेश्वर आपको मुक्ति दे जो उसके पास नहीं है? परमेश्वर ने मुझ पर एक दिन प्रकट किया कि मैं कैसा महत्वहीन मनुष्य हूं। जब उसने मुझे पीलिया से रोगग्रस्त किया, उस दिन मुझे बाइबल अध्ययन लेना था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, परंतु परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं तेरे आने से पूर्व भी तेरे बिना काम चला रहा था और तेरे बाद भी मेरा काम चलता रहेगा। तू सोचता है कि सभा में प्रचार करना महत्वपूर्ण है, परंतु मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है। मैं चाहता हूं कि तू यहां चित लेटकर मुझे निहारे और मेरे साथ अपने संबंध को सबसे अधिक महत्वपूर्ण जाने। मैं तुझे कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। तू कभी कभी मेरे वचन को अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुझे मेरे वचन की सच्चाई का बोध हो और थोड़ा सा कष्ट तुझे नाश नहीं करेगा, वह तुझे मेरी इच्छा के अनुरूप बनाएगा। मेरे मित्रों, मैंने सीखा कि मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? लिखा है, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। जी हाँ, यहाँ फिर पत्रस कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ धार्मिक समूहों में प्रभु यीशु के लहू की चर्चा नहीं है। अनेक कलीसियाओं में तो प्रभु यीशु के लहू से संबंधित गीत ही हटा दिए गए हैं। उनके तर्क में लहू की बातें पुरानी है। मैं नहीं मानता और पत्रस भी नहीं कहता कि यह लहू अब पुराना हो गया है। वह कहता है कि प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य है। तब वह आगे कहता है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। पत्रस 3 वर्ष प्रभु यीशु के साथ रहा था और वह कहता है कि प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है। वह पाप रहित था। वह निश्चय ही आज के विद्वानों से अधिक मान्य न्यायी है। ये लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु भी एक सामान्य पापी मनुष्य था। वे तो पैसा कमाने के लिए उलटफेर की बातें लिखते हैं। पत्रस पैसा बनाने नहीं और न ही कमाने के लिए निकला था। उसे तो प्रभु यीशु के कारण कष्ट और क्रूस की मृत्यु मिली थी। जी हाँ, वह कहता है कि हमारा उद्धार नाशवान सोने चांदी से नहीं, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू से। परमेश्वर ने हमारे लिए यह किया है। यह एक सिद्ध कथन है। मेरे मित्रों, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए अपने उस पवित्र और निष्कलंक बहुमूल्य लहू को बहा दिया, ताकि हम उस पाप से धोए जाएं, हम उद्धार को प्राप्त करें। पत्रस आगे कहता है, 1 अध्याय उसके 20 पद में, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था। प्रभु यीशु तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। पूर्वाभिषेक, चुनाव और पूर्व नियति में परमेश्वर की प्रभुता संपन्न इच्छा तार्किक रूप से उसके सब संभावित कार्यों के अनंत सर्वज्ञान से उत्पन्न थी। अतः समय के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर क्रम इस प्रकार है, सर्वज्ञान, ईश्वरीय निर्णय। इसी को हम कहते हैं पूर्वाभिषेक, चुनाव और पूर्वनियति तथा पूर्व ज्ञान। जिस प्रकार परमेश्वर का निर्णय अनादि है, उसी प्रकार उसका पूर्व ज्ञान भी अनादि है। उसका पूर्व ज्ञान सब घटनाओं का है, तो वह उन सब को समाहित करता है जो चुनाव में, पूर्व ज्ञान में और पूर्व नियति में हैं। अतः उसका चुनाव उसके पूर्व ज्ञान और उसका पूर्व ज्ञान उसके चुनाव के अनुसार है, अर्थात वे दोनों पूर्ण सामंजस्य में हैं। जब हम पूर्वाभिषेक, चुनाव, पूर्व नियति, पूर्व ज्ञान आदि शब्दों के विषय चर्चा करते हैं, तो मेरे विचार में हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर को एक विशाल कंप्यूटर समझते हैं, परंतु वह कंप्यूटर नहीं है। उसका हृदय संपूर्ण ब्रह्मांड में बड़ा है, संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़ा है। सेमिनरी में अध्ययन करते समय हमें यह जानना अनिवार्य हुआ कि परमेश्वर का पूर्व ज्ञान उसके पूर्वाभिषेक से पूर्व आता है या नहीं। परंतु सच कहूं तो उस समय ही से मुझे चिंता नहीं है कि क्या पहले आता है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि प्रभु यीशु का ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु जगत की नींव पड़ने से पहले वध किया हुआ मेमना था, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मुझे किसी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक प्रेमी परमेश्वर की आवश्यकता थी जो अपने अनुग्रह से उद्धार उपलब्ध कराता है, और उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उद्धारकर्ता दे दिया। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उधार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निःशुल्क उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसी के द्वारा उपलब्ध उधार आपको मिल सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में हम इसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जो सत्य है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं या नहीं, या आज भी आप उद्धार की खोज में हैं। यदि आप खोज में हैं, तो प्रभु यीशु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता है। क्या आज आप सचमुच उद्धार की तलाश में हैं, परमेश्वर की खोज में हैं? आज आपके लिए मौका है कि आप उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसी ने हमारे लिए अपने पवित्र बहुमूल्य लहू को बहा दिया ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। अनुग्रह से उद्धार उपलब्ध कराता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में उद्धार की बातों को सीखा है, और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेकर सत्यता को जानेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था, जब मैं गुनाहों में पड़ा तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था, पर तू ही मेरा सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा।